हरे कृष्णा। आज श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद और हमारे सारे पूर्वज आचार्यों की कृपा से हम यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन के चरणों में एकत्रित हुए हैं। आज यहाँ लोकल कैलेंडर के अनुसार आज गोवर्धन परिक्रमा का दिन है और आज हम यहाँ पर गुरुदेव श्री प्रभुपाद और सारे वैष्णव का आशीर्वाद और गिरिराज गोवर्धन का आशीर्वाद लेकर परिक्रमा आरंभ करने के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। ये स्थान जहाँ पर हम हैं ये कुसुम सरोवर कहा जाता है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करना भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये भक्ति का एक तरीका है, भक्ति का एक आइटम है और विशेष करके आज के दिन परिक्रमा करना बहुत ही मंगलकारी है। भक्तों के संगति में हरि नाम का कीर्तन करते हुए और गिरिराज गोवर्धन को अपनी दाई ओर रखकर प्रणाम करते हुए, गोवर्धन की महिमाएं असीमित हैं और ये भगवान का ही एक रूप है। गौड़ीय वैष्णव मानते हैं कि गोवर्धन स्वयं भगवान कृष्ण है और गोवर्धन स्वयं भगवान का भक्त भी हैं। आज के दिन जब सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज को कहकर वही पूजा जो इंद्र के लिए थी वो गिरिराज गोवर्धन को अर्पण की और गिरिराज ने सब भोग को स्वीकार कर लिया विशाल रूप धारण करके। तो ये भगवान का एक रूप है गिरिराज। और साथ साथ गोपियां भगवान कृष्ण के गुणगान में गिरिराज के बारे में कहते हैं कि गिरिराज गोवर्धन भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। हंतायम अद्री अबला हरिदास वर्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत पानी वासरय कंदर कंद मूलय। गोपियां बताते हैं कि गोवर्धन जो है वो भगवान हरि के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हरिदास वर्य वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ श्री गिरिराज गोवर्धन है क्योंकि गोवर्धन हर रूप से भक्तों के सेवक हैं। सर्वश्रेष्ठ भक्त वो है जिस भक्तों का सेवक है। गोवर्धन अपने घास के द्वारा, अपने कंदराओं के द्वारा, अपने फल और कंदमूल के द्वारा और अपनी गुफाओं के द्वारा कृष्ण बलराम उनके सखा ग्वाल बाल और बछड़े सबकी सेवा में लीन है। इसीलिए गिरिराज को हरिदास वर्य कहा गया है और हमेशा उनके चरणों पर यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री बलराम जी के चरण कमल हमेशा उन पर अंकित रहते हैं। ये गोवर्धन स्थान हम सब गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर पहली बार आए तो एक गोवर्धन शिला को देखकर उनको गले लगाया और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने परिक्रमा की और सब हमारे सारे आचार्य जो हुए हैं हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में उन्होंने इस गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का अनुसंधान किया है। हम सब भिक्षुक हैं, हम महात्माओं के पदचिन्हों में चलना चाहते हैं। महाजन ये न गत सब पंथ, सबसे सरल और सबसे सुरक्षित सेफ रास्ता वही है जो महात्माओं के पदचिन्हों में चलना है और इसीलिए हम आज यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहते हैं। गुरुदेव श्रील प्रभुपाद और समस्त पूर्वज आचार्यों के चरणों को अपने सिर पे धारण करके उनकी कृपा को मांगते हुए जिसके द्वारा हम अपने हृदय को शुद्ध बना सके। भक्ति का एकमात्र लक्ष्य है स्वयं के हृदय को एक स्वच्छ स्थान बताना जहां पर भगवान श्री राधा गोविंद अपने नित्य लीलाओं को प्रकट कर सके। और गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा विशेष करके आज के दिन करना, ये हृदय को स्वच्छ बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जब हम इस परिक्रमा में होते हैं तो हमें बड़े आदर की भावना के साथ रहना चाहिए, क्योंकि गिरिराज जो है भगवान का ही एक रूप है। गिरिराज का ये मंदिर है, ये जो 20 किलोमीटर की जो परंपरा है उसमें हर समय हम गिरिराज के पास दर्शन कर रहे हैं। ये एक मंदिर है विश्व में, इसके दर्शन कभी बंद नहीं होते, हमेशा गिरिराज कृपा करके दर्शन देते हैं। और जब हम परिक्रमा कर रहे होते हैं तो हमारी ये बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस परिक्रमा के दौरान हम सब एक क्षण भी कोई दूसरी बात नहीं करें सिवाय कृष्ण नाम और कृष्ण कथा के और कृष्ण सेवा के। हमेशा इस भावना में रहें कि मैं भगवान की परिक्रमा कर रहा हूं और उनके दर्शन कर रहा हूं, और एक भिक्षुक की भावना में रहें। हमारी परंपरा के महान आचार्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि हमारे प्रयोजन आचार्य हैं, वे इस तरह से प्रार्थना बताते हैं कि निज निकट स्थान देहि गोवर्धन त्वम। हम गिरिराज श्री गोवर्धन के चरणों में, उनके चरणों के पास में एक निवास स्थान चाहते हैं। ये दुनिया एक भयावह स्थान है, समाश्रिता ये पदप्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम बुधिर वत्स पदम 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 यद विपदम न तेषम। इस भौतिक दुनिया में हर क्षण हर कदम पर खतरा ही खतरा है, लेकिन गिरिराज के चरणों में अगर हम निवास करते हैं, मुकुंद के चरणों में अगर निवास करते हैं, तो हम सारे भय से मुक्त हो सकते हैं। 5000 वर्ष पहले जब भगवान कृष्ण नंद महाराज को कहते हैं कि आप ये इंद्र की पूजा बंद कर गोवर्धन की पूजा करो, तो इंद्र बड़े क्रोध के साथ बरसात करते हैं, लेकिन भगवान श्याम सुंदर अपने नन्हे से उंगली से गिरिराज को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। आज हम भी भगवान की सुरक्षा मांगने के लिए आए हैं। माया के प्रहार से हम सब पीड़ित हैं। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में कि ये जो माया शक्ति है इसको पार करना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। ब्रह्मा और शिव भी इस माया से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जब कोई भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लेता है, जब कोई गिरिराज का आश्रय लेता है, तब वह सुरक्षित रह सकता है। इस भावना के साथ आज हम गिरिराज परिक्रमा कर रहे हैं कि भगवान गिरिराज हमारे पर प्रसन्न हो। भक्ति के सब प्रयास सब उद्देश्य का एक ही केंद्र है, संसिद्धिर हरि तोषणम। भगवान हरि या भगवान गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न हो। कितने प्रिय है ये गोवर्धन परिक्रमा हमारे सब आचार्यों को, यह हम इससे जान सकते हैं कि सनातन गोस्वामी रोज गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते, रघुनाथ दास गोस्वामी रोज परिक्रमा करते, हमारे फाउंडर आचार्य श्लेषी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अपने आखिरी दिनों में श्री ब्रजधाम में पधारे और उनकी ये तीव्र इच्छा थी कि वो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करें, और उन्होंने अपने शिष्य श्री लोकनाथ महाराज को बताया कि आप बैलगाड़ी का इंतजाम करिए जिससे कि मैं परिक्रमा कर सकूं। और कई भक्त उनको बता रहे थे क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और डॉक्टर्स भी बता रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी बोले कोई बात नहीं, अगर परिक्रमा करते करते मैं अपना देह त्याग कर दूं तो बहुत ही अच्छी बात है, उनकी इतनी तीव्र इच्छा थी। बाद में भक्तों के निवेदन पर, भक्तों की खुशी के लिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए परिक्रमा उस समय नहीं की, परंतु वो दिखा रहे थे अपने उदाहरण से कि ये कितने महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का, ये कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। सनातन गोस्वामी वृद्धावस्था में भी परिक्रमा करते और भगवान कृष्ण उनको प्रकट होकर उनको स्वयं एक गिरिराज शिला देते हैं जिस पर उनके चरण कमल अंकित हैं और उनके बछड़ों के चरण कमल हैं। भगवान से बताते हैं कि आप इसकी परिक्रमा करो 4 बार तो आप उसको आपको यही फल प्राप्त होगा। स्वयं चैतन्य महाप्रभु एक गिरिराज शिला को अपने गले में बांध के रखते हमेशा, वो शिला उनके आंसुओं से भिगोई रहती और उनके अंगुली के स्पर्श, उनके प्रेम के कारण वो शिला पिघल गई थी और उनके अंगुली के स्पर्श के निशान आज भी अंकित हैं और ये शिला उन्होंने बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रदान की। आज परिक्रमा को शुरू करने से पहले मैं आप सबके बीच में श्री राधानाथ स्वामी महाराज का जो परिक्रमा की शुरुआत में दिया हुआ प्रवचन का हिंदी में अनुवाद करके सुनाऊंगा, जिससे कि उनके शब्दों के रूप में उनके आशीर्वाद हमारे साथ में रहे। वास्तव में गुरु की वैष्णव की वाणी जो है वही हमारे लिए आधार है और वही सब मंगलकारी है, और उस रूप से उस वाणी के रूप के द्वारा हम उनके संग को प्राप्त कर सकते हैं। गिरिराज गोवर्धन एक मोर के आकार में है और मानसी गंगा जो है वहां पर मुखारविंद वो उनका मुंह है, राधा कुंड श्याम कुंड ये उनके दो आंखें हैं। हम इस परिक्रमा के दौरान हम अपने मन को अपने शरीर को और अपने वचन को श्री गिरिराज के चरणों में अर्पण करना चाहते हैं। ब्रजवासी और हमारे पूर्वज आचार्य इस परंपरा जो परंपरा में हुए हैं वे सब इस गिरिराज की पूजा का विधान बताते हैं। माधवेंद्र पुरी जब वो ब्रज में आए थे तब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की थी, और थोड़े समय बाद जब हम गोविंद कुंड के पास जाएंगे तो आप देखोगे वो स्थान जहां पर उनको स्वयं भगवान कृष्ण उनके लिए दूध लेकर आते हैं। श्री ईश्वरपुरी जो श्री गौरंग महाप्रभु के गुरु हैं उन्होंने भी गोवर्धन परिक्रमा की थी। स्वयं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, षड गोस्वामी, उन सब के भजन का गोवर्धन परिक्रमा जो है एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। सनातन गोस्वामी अभी यहां से पास में ही स्थान है मानसी गंगा के पास, चकलेश्वर महादेव, जैसे कि पहले बताया गया कि शिवजी अनेक स्थानों पर क्षेत्रपाल के रूप में निवास करते हैं, नंदग्राम में नंदीश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, काम्यवन में कामेश्वर और गोवर्धन में चकलेश्वर। चकलेश्वर महादेव के पास ही शिला सनातन गोस्वामी निवास करते थे, वहीं पर रहकर उन्होंने बृहद भागवतामृत और अनेक ग्रंथ लिखे। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, इनकी परिक्रमा का वर्णन भक्ति रत्नाकार में किया गया और वे भी गोवर्धन परिक्रमा के लिए आए थे। शिला भक्ति सिद्धांत असिर ठाकुर, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, इनकी भी भजन कुटिया गोवर्धन में राधा कुंड के पास है और वो भी रेगुलरली ये परिक्रमा करते थे। तो आज हम उन महात्माओं के पद चिन्हों में चल रहे हैं। ये जानना चाहिए जो गोवर्धन के पास में धूल है वे साधारण धूल नहीं है, ये सब भगवान राधा कृष्ण सारे आचार्य इन सब के चरणों की धूल है। जब हम वहां से गुजर रहे हैं तो हम इस धूल को प्रणाम करते हुए गुजरना चाहिए। ब्रज में तीन चीजें हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं। ये तीन चीजें जब तक हैं तब तक ये तीन चीजें हम सबको सारे कलयुग के प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं। एक है यमुना मैया, दूसरी है ब्रज की धूल और तीसरी है गिरिराज गोवर्धन। गोवर्धन के उद्गम के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस भौतिक जगत से परे वैकुंठ धाम है और वैकुंठ धाम से भी परे श्री गोलोक वृंदावन धाम है, जहां पर भगवान राधा और कृष्ण नित्य रूप से विहार करते हैं। गर्ग संहिता में बताया गया है कि गोवर्धन पर्वत जो है वो भगवान कृष्ण के हृदय से श्रीमती राधा रानी के उनके अनंत प्रेम के कारण उनके हृदय से प्रकट हुआ है, और श्रीमती राधा रानी जब भगवान कृष्ण की लीला का समय आया और उन्होंने श्रीमती राधा रानी को बताया कि अब हमें धरती पर लीला करना है, श्रीमती राधा रानी ने बताया कि मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक यमुना और गिरिराज गोवर्धन इस दुनिया में नहीं हो। अब भगवान श्याम सुंदर ने बताया कि वो पहले से ही प्रकट हो चुके हैं। इस भौम वृंदावन में गिरिराज का प्रवेश की कथा इस प्रकार से बताई गई है। हिमालय पर्वत के इलाके में एक पर्वत है जिसका नाम है द्रोणाचल, और द्रोणाचल के पुत्र हैं श्री गिरिराज। जब गोवर्धन प्रकट हुए तब सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, सब जानते थे कि ये कृष्ण का भविष्य का प्लेग्राउंड है, उनके खेलने का इलाका है, और सारे देवता फूलों की बरसात करने लगे गिरिराज के प्रकट होने पर। तो गिरिराज उस समय हिमालय के पास पर वास करते थे। एक दिन पुलत्स्य ऋषि भ्रमण करते करते हिमालय के पास पहुंचे, और उन्होंने जब गिरिराज गोवर्धन को देखा तो सोचने लगे कि बहुत अच्छा जगह है, मैं तो वाराणसी में रहता हूं, वहां कोई ऐसा सुंदर पर्वत नहीं है, ये पर्वत मेरे भजन के लिए बहुत योग्य होगा। तो उन्होंने निवेदन किया द्रोणाचल से कि मैं चाहता हूं कि आपके पुत्र गिरिराज को मैं वाराणसी में ले जाऊं। द्रोणाचल की इच्छा नहीं थी, परंतु पुलत्स्य ऋषि की खुशी के लिए उन्होंने निवेदन को स्वीकार किया। गिरिराज गोवर्धन सब जानते थे, इसलिए गिरिराज गोवर्धन ने ये एक शर्त बताई कि मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, परंतु एक शर्त है, एक स्थान पर अगर आप मुझे रख देते हैं फिर मैं वहां से नहीं हिलूंगा। पुलत्स्य मुनि गिरिराज गोवर्धन को लेकर वाराणसी की ओर निकल पड़े। जब गिरिराज गोवर्धन इस ब्रजभूमि के इलाके में पहुंचे तो गिरिराज गोवर्धन जो कि स्वयं भगवान भी हैं, उन्होंने अपनी दिव्य इच्छा इस प्रकार से प्रकट की। अचानक पुलत्स्य मुनि को शौच क्रिया के लिए जाने की बहुत तीव्र इच्छा हुई, और उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को रखा एक स्थान पर, इस स्थान पर जहां पर हम लोग बैठे हैं, ये मतलब गोवर्धन के इलाके में। और जब वो अपनी क्रिया करके लौट के आए और उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को फिर से उठाने का प्रयास किया, परंतु गिरिराज हिले नहीं, क्योंकि उनकी शर्त थी कि एक बार जिस स्थान पर रखा जाएगा वहां से मैं नहीं हिलूंगा। उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन गिरिराज टस से मस नहीं हुए, और अंत में गुस्से में आकर पुलत्स्य मुनि ने शाप दिया कि आप को मैं शाप देता हूं कि आप रोज अपने कद में एक राई के दाने के समान कम होते जाओगे, जो भी आपकी हाइट है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये लीला हुई थी सत्युग के समय, और इस तरह से एक कण कम होते 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 अब ये समय कम हो गया है, अब कद कम हो गया है। गिरिराज गोवर्धन सत्युग के समय बहुत ऊंचा, कई मील ऊंचा था, और एक्चुअली वास्तव में गिरिराज गोवर्धन बहुत प्रसन्न हुए इस आशीर्वाद से, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन का कद उस समय इतना ऊंचा था, कई मील ऊंचा, और कृष्ण के लिए खेलने के लिए अनुकूल नहीं था। खेलने के लिए ऐसे पर्वत बहुत मुश्किल है जहां पर कई मील चढ़ना पड़े। तो भगवान कृष्ण की इच्छा थी ये शाप की, जैसे कि गिरिराज गोवर्धन उस समय का हो, उस कद का हो जब द्वापर युग में, जिसे भगवान श्याम सुंदर बलराम जी के साथ अपनी लीला में बड़े आनंद के साथ विहार कर सके। और धीरे धीरे द्वापर युग के समय के बाद जब भगवान कृष्ण यहां पर थे तब इसका कद करीब 2 मील ऊंचा था, और आज आप देखोगे कुछ कुछ इलाकों में आप गोवर्धन को बहुत ऊंचा देखोगे, और जहां पर वो बहुत ऊंचा है वहां पर उसका साइज करीब 80 फीट है। ये हो गया बाह्य कारण गिरिराज गोवर्धन के कद का कम होने का, परंतु इसका अंतरंग कारण हमारे पूर्वज आचार्य इस प्रकार बताते हैं। वे बताते हैं कि गिरिराज गोवर्धन का कद छोटा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने प्रिय श्रीमती राधा रानी के विरह के कारण उनका कद छोटा हो रहा है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की लादिनी शक्ति हैं, और ये जो श्लोक मैंने पहले आपको बताया, हंतायम अद्री अबला हरिदास वर्य, ये श्लोक आचार्य बताते हैं कि स्वयं श्रीमती राधा रानी ने कहा है। हरिदास वर्य के रूप में युधिष्ठिर महाराज को भी हरिदास कहा जाता है, उद्धव जी को भी हरिदास कहा जाता है, परंतु गोवर्धन को हरिदास वर्य कहा गया है, क्योंकि कृष्ण इस गिरिराज के रूप में, भक्त के रूप में अपने ग्वाल बाल, अपने सखा और अपने मित्रों को आनंद देते हैं। फिर राधा रानी के द्वारा जो वर्णित शब्द है हरिदास वर्य, इसे हम समझ सकते हैं कि वो भक्त भगवान को अति प्रिय है जो दूसरे भक्तों की सेवा में लगा है। मद भक्त या पूजा दीपिका मां गोपीर भरतूर पद कमलोर दास दास अनुदास। गिरिराज गोवर्धन में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं, जिसका अर्थ है वो प्रेम के लक्षण से रोमांचकम पशु तरंग भाजो हम गाते हैं। ये गिरिराज में कैसे प्रकट होते हैं इसका वर्णन श्री राधानाथ स्वामी महाराज इस प्रकार करते हैं। शरीर के बालों का खड़ा होना, जो गोवर्धन के ऊपर जो हरी भरी घास है वो उनके बाल हैं, और उनके बाल जो हैं उनके अंदर एक विशेष गुण है। पहला गुण है सुगंध। गिरिराज की जो घास है उसकी हर एक तिनका जो है वो बहुत सुंदर असीमित सुगंध से भरा हुआ है, और ऐसे असीमित घास के तिनके हैं, और हर एक घास जो है वो कृष्ण बलराम गोप और गोपी और गायों को बहुत आनंद देने वाला है। दूसरा उन घासों का गुण है सुकोमल, जिसका अर्थ है कि हर एक घास का तिनका जो है बहुत ही कोमल है। गिरिराज गोवर्धन अपने घास को जानबूझकर इस तरह से कोमल करते हैं कि जिसे कृष्ण बलराम गोप और गोपियां जब अपने चरण कमल वहां पर रखें तो उनको अत्याधिक आनंद हो, और जब गाय इस घास को खाते हैं न केवल वो घास बहुत सुगंधित है और बहुत आनंदित है, लेकिन इतनी कोमल है कि जब गाय खाते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं हो और न ही उनको किसी प्रकार से कोई दर्द हो। गिरिराज गोवर्धन के घास का एक और गुण है पुष्टिवर्धन, अर्थात ये जो घास है वो बहुत न्यूट्रिशियस बहुत पुष्टि से भरा हुआ है, और जो भी गाय इस घास को खाते हैं वो कभी थकेंगे नहीं, न उनको भूख लगेगी न प्यास लगेगी और किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। काश हम लोग भी ये घास खा सकते कम परिक्रमा में थकते नहीं कभी। चौथा गुण है इस घास का दुग्ध शंबक, कि जो गाय कृष्ण की जो गाय ये घास खाते हैं तो जब वो दूध देते हैं वो भी बहुत विशेष होता है, वो दूध अमृत के समान होता है। श्रीमती राधिका माँ यशोदा और गोपियां इस गाय को उपयोग करते हैं जिससे कि वो कृष्ण बलराम के लिए दूध दही मक्खन और अनेक पदार्थ बना सके। गिरिराज गोवर्धन की जो घास है उसको न केवल साधारण बरसात का पानी मिलता है, लेकिन जो गाय जो इस घास को खा रहे हैं वो इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि जब वो उधर से गुजरते हैं तो अपना दूध उस घास पर प्रकट करते हैं, उस घास पर छोड़ते रहते हैं। इस तरह से उस घास को खाकर गाय बहुत प्रसन्न होते हैं और उस प्रसन्नता के कारण वो दूध देते हैं जिससे वो घास और भी ज्यादा पुष्टिवर्धन हो जाते हैं। न केवल धरती के गाय, कई बार स्वर्ग के गाय और सुरभि गाय भी और घोड़े भी यहाँ पर आते हैं गोवर्धन के पास में उस घास को ग्रहण करने के लिए, और सूर्यदेव इतने प्रसन्न होते हैं कि वो विशेष किरण प्रदान करते हैं गिरिराज गोवर्धन के घास को ज्यादा अच्छी तरह से उगने के लिए। ये पहला लक्षण हो गया शरीर के बाल खड़े होना। दूसरा लक्षण जो राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं वो है आंखों में अश्रु आना। गिरिराज गोवर्धन से अश्रु किस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, यहाँ पर आप देखोगे परिक्रमा में असंख्य झरने हैं और सरोवर हैं और कुंड हैं, और कृष्ण के समय और भी विशेष नदियां भी थी छोटी छोटी, और अगर आपके पास आंखें हैं आध्यात्मिक आंखें तो अभी भी यहाँ पर हैं, और जो यहाँ के जो चट्टाने हैं जो रॉक्स हैं वो सोने के बने हैं और वो हीरे और मणियों से सजे हुए हैं। जो गोवर्धन का जल है वो गिरिराज गोवर्धन के हृदय से द्रव्य रूप से प्रेम है, लिक्विड प्रेम एमिनेटिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ गिरिराज गोवर्धन। और जब कृष्ण और उनके सखा उन सरोवर में स्नान करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। इस तरह से जब गिरिराज गोवर्धन के सरोवर में कृष्ण स्नान कर रहे हैं तो ऐसा लगता है सुबह जैसे कृष्ण उनको गले लगा रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन का जो जल है वो इतना मीठा और अमृतमय है कि सारे ब्रजवासी जब ये जल को ग्रहण करते हैं तो वो बड़े नशे में मग्न होते हैं, वो नाचने लगते हैं और गाने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरिराज गोवर्धन के जो तीसरा लक्षण है पसीना आना, द मॉर्निंग ड्यू, जो सवेरे के समय जो व्हाट यू से फॉर ड्यू द्रव जो प्रकट होता है वो गोवर्धन के पसीना आना है। गिरिराज गोवर्धन के जो शिलाएं हैं वो ऐसी हैं कि सर्दी के समय वो गर्म होते हैं और गर्मी के समय वो ठंडक प्रदान करते हैं, नेचुरल एसी ब्रजवासियों की प्रसन्नता के लिए। गोपियों को बहुत कई बार भागवतों में आता है कि बहुत दुख होता है कि कृष्ण जा रहे होंगे ब्रज में और उनके पैरों में कंकड़ लग रहे होंगे तो उनको बहुत तकलीफ हो रही होगी। तो गिरिराज पर्वत क्या करते हैं कि जैसे श्याम सुंदर या उनके सखा कोई कोई पर, कोई चोट कोई चट्टान पे पत्थर पे पैर रखते हैं तो वो चट्टान जो है पिघल जाता है और वो द्रव्य बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, जिससे कृष्ण को उनके सखाओं को कोई तकलीफ ही नहीं हो। यहाँ पर बहुत सारे स्थान है, थोड़ी आगे हम लोग जाएंगे श्याम वन है, श्याम वन में आप देखोगे कि वहां पर भगवान के चरण कमल के निशान है और उनके मुरली के निशान है, उनके छड़ी के और उनके गायों के निशान है। जब कोई कांटा रास्ते में आता है कृष्ण जब चल रहे होते हैं तो गिरिराज गोवर्धन क्या करते हैं कि वो कांटे को एक कमल की पंखुड़ी बना देते हैं जिससे कृष्ण को बहुत आनंद हो। और ऐसे ही जब बड़े बड़े पत्थर आते हैं वो भी कमल के फूल बन जाते हैं। इस तरह से गिरिराज हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आप को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अनुकूल बनाना चाहिए। गिरिराज की दया किस प्रकार से प्रकट हो रही है सब जीवात्माओं के लिए कि वो वैसी सुंदर लीलाओं का स्थान बनाते हैं जिसे वैष्णव उन लीलाओं का गान कर सकें। थोड़ी दूर के पास हम जब जाएंगे तो मानसी गंगा का दर्शन करेंगे। ये हमारी परंपरा है कि परिक्रमा के दौरान मानसी गंगा में तीन बूंद स्नान करें। मानसी गंगा की कहानी इस प्रकार श्री राधानाथ महाराज बताते हैं कि वशिष्ठ मुनि जब एक बार एक असुर था, उसका नाम था प्रमिला असुर, और वो वशिष्ठ मुनि के पास गए और वशिष्ठ मुनि के कामधेनु गाय को चाहते थे। तो ये गाय वशिष्ठ मुनि को घी और दूध और सब पदार्थ प्रदान करते थे और वो असुर आकर कहने लगा कि मुझे एक गाय चाहिए। उसने अपने आप को वेश बदल दिया, वो एक ब्राह्मण के रूप में आया। वशिष्ठ मुनि से बोला कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं दान मांगना चाहता हूं, कृपया एक गाय दान में दो। वशिष्ठ मुनि उस समय मौन व्रत धारण किए थे। तो वशिष्ठ मुनि की गाय का नाम नंदिनी था, वो कहने लगी कि असुर, मैं जानती हूं कि तुम कौन हो, तुम एक असुर हो और धोखा दे रहे हो, मैं तुम्हें शाप देती हूं कि जाओ तुम एक बछड़ी बन जाओ, फीमेल कैफ। तो इस तरह से उसको शाप मिल गया। शाप मिलने के बाद वशिष्ठ मुनि से भीख मांगने लगे, मुझे माफ कर दो। तब उन्होंने कहा ठीक है, आप बछड़े तो बनोगे लेकिन द्वापर युग में श्याम सुंदर कृष्ण आपको मार के आपका उद्धार करेंगे। तो प्रमिलासुर कृष्ण लीला में वत्सासुर के रूप में आया और आपने कहानी कई बार सुनी है कि कैसे कृष्ण और बलराम जब खेल रहे थे, कृष्ण ने ये जो असुर है वत्सासुर एक बछड़े के रूप में आया था और भगवान कृष्ण ने बड़े आसानी इसके पैर पकड़ के गोल गोल घुमा के उसका अंत कर दिया। सारे गोप कहने लगे कृष्ण ये क्या हो रहा है, आपका नाम है गोपाल, गोपाल को गाय की रक्षा करनी चाहिए और आपने बछड़े का वध कर दिया है, तुमने गोहत्या कर दिया है, तुम अपराधी हो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। कृष्ण ने पूछा कैसे प्रायश्चित करना होगा, सब सखा कहने लगे कि आपको गंगा में स्नान करना होगा। तो कृष्ण ये बताना चाहते थे कि ब्रज में सारे तीर्थ हैं, ब्रज से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने गंगा जी को प्रकट होने के लिए अपने मन से कहा और कृष्ण के मन से गंगा मई यहाँ प्रकट हुए जिसको मानसी गंगा कहते हैं। और आचार्य बताते हैं मानसी गंगा और गंगा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्नान करने का लाभ लाख गुना ज्यादा है जो हरिद्वार में गंगा है उसकी तुलना में, विशेष करके कार्तिक के महीने में। एक बार नंद महाराज यशोदा मई और सब ब्रजवासी एक कहानी सुन रहे थे, एक ब्राह्मण आकर उनको गंगा महात्म्य सुना रहे थे वो बता रहे थे कि एक बार गरुड़ जी एक सांप को लेकर जा रहे थे, तो खाने वाले थे, और उस सांप की पूंछ ने गंगा जी के जल को स्पर्श किया। उस गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से उस सांप ने दिव्य रूप धारण कर लिया, चतुर्भुज रूप। और वो गरुड़ जी जो सांप को खाने वाले थे, उस चतुर्भुज रूप धारण किए हुए व्यक्ति को अपने कंधे पर वापस वैकुंठ ले गए। तो जब नंद महाराज ने कहानी सुनी तो सोचने लगे हमें भी जाना चाहिए गंगा में स्नान करने के लिए। हरिद्वार सब तैयारी करने लगे। कृष्ण ने पूछा, बाबा बाबा आप कहाँ जा रहे हो, बाबा बाबा आप कहाँ जा रहे हो? तो नंद महाराज बताने लगे कि हम जा रहे हैं गंगा में स्नान करने के लिए। श्याम सुंदर कृष्ण ने बताया कि आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, गंगा यहीं पर है, मानसी गंगा के रूप में। तो इस तरह से यहां पर नंद महाराज को कहानी बताने लगे। और जब नंद महाराज स्नान करने गए तो वहां पर आपने देखा होगा गंगा माता का एक वाहन है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ के वाहन के ऊपर सवार होकर गंगा माता प्रकट हुई। श्री राधानाथ महाराज बताते हैं कि गंगा ब्रजभूमि में जो है वो कहीं और से हजार गुना ज्यादा पवित्र करने वाली है। श्री वृंदावन धाम की जय। गोस्वामी आचार्य जीव गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है गोपाल चंपू, और उसमें एक बहुत सुंदर लीला बताते हैं मानसी गंगा की। उसमें मानसी गंगा बहुत बड़ी थी, और आप देखोगे यहाँ पर हम दान घाटी के पास जाएंगे तो कई बार गोपियां एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए मानसी गंगा में विहार करते थे। तो जब गोपियां एक बार राधा रानी और सब गोपियां जब उस मानसी गंगा को पार करना चाहते थे, देखा कोई नौका नहीं थी, कोई नाविक नहीं था, एक नाविक दिखाई पड़ा, उसकी पुरानी नौका थी, और उन्होंने कहा कि आप हमें पार ले जाओ। और वो नाविक कहने लगा मैं ले जाऊंगा। और जब वो बैठ गए और नौका चलने लगी, थोड़ी देर बाद वो नाविक रुक गया, बोला मैं आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? मुझे बहुत भूख लगी है, आपके पास जो दूध दही मक्खन है वो आप मुझे दीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो गोपियों ने अपना बहुत सारा दूध दही दे दिया, और थोड़ी दूर जाने के बाद वो कहने लगा गोपियों से, मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरे हाथ पैर आप थोड़ा मसाज करिए, तब मैं आगे चलूंगा। तो गोपियों ने मसाज करना शुरू किया, गोपियां बोलने लगी जल्दी चलो देर हो रही है। फिर वो रुक गया, बोला कि वजन बहुत भारी हो रहा है, आपके शरीर के आभूषण मानसी गंगा में फेंक दो। तो गोपियों ने अपने सारे मटके और सारे आभूषण भी फेंक दिया। फिर कृष्ण कहने लगे, कृष्ण नहीं नाविक मतलब कृष्ण कि आप अभी इतना भार हो रहा है, आपको अपने कपड़े या मानसी गंगा में फेंक देने चाहिए। तो गोपियां बोले कि ठीक है, सबसे पहले हम आपको ही मानसी गंगा में फेंक देंगे। और थोड़ी देर बाद आकाश में भयंकर बादल प्रकट होने लगे और सब बिजली कड़कने लगी और नाव इधर डगमगाने लगी, और सारे गोपियां घबरा गए और डर के मारे श्रीमती राधा रानी ने अपनी भुजाओं को उस नाविक के गले में रखा, बचाओ बचाओ। और तब उसने देखा, अरे उनके कपड़ों में छिपी हुई मुरली थी, तब वो समझ गए कि ये हमारे प्राणनाथ भगवान श्याम सुंदर हैं। मानसी गंगा की जय। अब एक छोटी कहानी कहकर हम लोग परिक्रमा आरंभ करेंगे। हरिदेव, हम लोग हरिदेव का दर्शन करेंगे। चार देव हैं जो वज्रनाभ ने स्थापना की थे, एक गोवर्धन में हरिदेव, और वृंदावन में गोविंद देव, मथुरा में केशव देव, और दाऊजी बलदेव, ये चार देव हैं। तो ये जो हरिदेव हैं, ये मथुरा मंडल के पश्चिम दिशा के पंखुड़ी के मुख्य भगवान हैं, जो मुख्य रूप हैं, जो कि स्थापना वही ओरिजिनल मूर्ति आज हम लोग अगर भगवान की इच्छा हुई तो हम दर्शन कर पाएंगे। ये हरिदेव कैसे प्रकट हुए इसकी कथा इस प्रकार बताई गई है कि एक बार ब्रज गोपियां विरह में मानसी गंगा में कृष्ण का विरह अनुभव कर रहे थे, और विरह के कारण जब कृष्ण नहीं दिखाई पड़ रहे थे तब वो बहुत पुकार रहे थे, और उस समय वो पुकारने लगे हरिदेव हरिदेव, सब लोग बोलिए। और उस समय जब वो हरिदेव का नाम पुकार रहे थे, भगवान इस सुंदर विग्रह के रूप में प्रकट हुए और गोपियां उस विग्रह की आराधना करने लगे, और वही विग्रह की आराधना वज्रनाभ ने की। जब चैतन्य महाप्रभु यहां पर आए आज से 500 साल पहले, वो पहले राधा कुंड के पास आए अरिट ग्राम, और फिर वो हरिदेव जी के उन्होंने दर्शन किए, बहुत सुंदर नृत्य किया और कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्रों में विशेष करके बताया गया कि परिक्रमा शुरू करने से पहले हरिदेव का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो हम परिक्रमा के दौरान लेंगे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, और मानसी गंगा में स्नान भी करेंगे। और साथ साथ हमें एक चीज जाननी चाहिए कि जब हम परिक्रमा कर रहे हैं, जो हर एक शिला है वो गिरिराज से अभिन्न है, इसलिए कहीं पर भी किसी को पैर नहीं रखना चाहिए गिरिराज पर्वत पर, क्योंकि हमारी परंपरा है ब्रजवासी ऊपर जा सकते हैं लेकिन गौड़ीय वैष्णव गिरिराज को भगवान से अभिन्न मानते हैं, कभी उस पर पैर नहीं रखते। यानी हर एक शिला जो डीटी के समान है, और कोई शिला अपने घर में गिफ्ट के रूप में मत लेकर जाइए, क्योंकि उसके लिए एक तरीका है, वो ऐसे संभव नहीं है, और बहुत सावधानी से जाना चाहिए। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आप पास में देखोगे एक मंदिर है जहाँ पर गोपाल जी की मूर्ति प्रकट हुई, जब अपने राधा गोपीनाथ में अपने राइट साइड में जो मूर्ति है भगवान गोवर्धन पर्वत धारण की, वो ओरिजिनल मूर्ति नाथद्वारा में है, वो गिरिराज यही वो मूर्ति यहीं से प्रकट हुई थी माधवेंद्रपुरी को, और महाप्रभु की तीव्र इच्छा थी कि मेरे परम गुरुदेव माधवेंद्रपुरी की मैं मूर्ति का दर्शन करूं, लेकिन ये मूर्ति पर्वत के ऊपर है, मैं कैसे जा सकता हूं। तो हालांकि वो स्वयं भगवान है, उन्होंने एटिकेट पालन किया, वो ऊपर नहीं चढ़े। और थोड़े दिनों बाद गिरिराज गोपाल जी को इच्छा हुई कि मैं चैतन्य महाप्रभु को अपना दर्शन दूं, भगवान ही भगवान का दर्शन करना चाहते थे। और उस समय अचानक सब जगह समाचार फैल गया, मुसलमान सैनिक आ रहे हैं, सावधान सावधान। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, और पुजारी उस विग्रह को नीचे ले आए। यहाँ पास में एक गांव है जिसका नाम है गांटुली ग्राम, वहां पर उस वो मूर्ति की सेवा करने लगे, और चैतन्य महाप्रभु रोज दर्शन के लिए जाते और नित्य करते गाते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक महीने तक भगवान गांठुली ग्राम में रहे। गांठुली ग्राम वो ग्राम है जहां पर गोपियों ने मजाक में राधा और कृष्ण के वस्त्र आपस में बांध दिए थे, गांठ बांध दी थी, इसका नाम गांठुली ग्राम है। तो एक महीने तक महाप्रभु ने दर्शन किए, और फिर समाचार आया कि मुसलमान सैनिक नहीं आ रहे। तो फिर गोपाल जी वापस ऊपर चले गए। तो ये थोड़ी कुछ कथाएं हैं जो कि यहाँ परंपरा के अनुसार बताए जाते हैं। अंत में फिर से मैं इस शब्द को दोहराना चाहूंगा कि हम जब हम ये पूजा कर रहे हैं, ये परिक्रमा कर रहे हैं, ये एक पूजा का तरीका है। आज से कुछ 10 दिन पहले मेरा सौभाग्य था, परम पूज्य राधानाथ महाराज कुछ भक्तों को परिक्रमा में ले गए थे, और उस दौरान उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई। वो बोल रहे थे जैसे आप आरती कर रहे हो, तो जब ड्यूटी के तो आरती करते समय आप बीच में बोलते नहीं हो, और नहीं आप कुछ दूसरे काम करने जाते, आपका पूरा ध्यान आरती पर होता है। ऐसे ये जो है ये 20 किलोमीटर की आरती है हम कर रहे हैं, ये गिरिराज गोवर्धन की, समय कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ प्रसाद ले सकते हैं क्योंकि जरूरी है नहीं तो, लेकिन ये पूरा जो है 20 किलोमीटर हम आरती कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। महाराज अंत में बोलते हैं, इफ वी डू दिस पूजा टू इंस्पायर बेटर सर्विस टू द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, देन इट विल बी द ग्रेटेस्ट सर्विस टू द लॉर्ड। ये सबसे बड़ी सेवा होगी अगर हम ये पूजा गोवर्धन अच्छी तरीके से, श्री गुरु श्रील प्रभुपाद हमारे आदरणीय पूजनीय शरद गोस्वामी और आचार्य के लिए करें। गो मतलब गाय, और वर्धन मतलब आनंद देने वाले। तो गिरिराज गोवर्धन जो हमेशा भगवान और उनके भक्तों को आनंद देने वाले हैं, आज हम उनको प्रसन्न करेंगे, और उनको प्रसन्न करके सबको प्रसन्न करेंगे, कृष्ण को प्रसन्न करें। सब लोग ये प्रार्थना जो महाराज बता रहे हैं वो मन में करें, और फिर गिरिराज महाराज की जय, गिरि गोवर्धन की जय, गिरिराज पूजा की जय, शील प्रभु पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।